وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کیونکہ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، سر تسلیم خم کر چکے تھے۔ ایسے لوگوں کو کیا ملے گا؟ اُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا ان کا اجر دو بار ان کے صبر کی وجہ سے۔ اور ان کی خوبی کیا ہے؟ یہاں نمبر ایک لگا لیجئے، بِمَا صَبَرُوا پہ۔ دوسری خوبی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو، یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ تیسری ان کی خوبی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی خوبی، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ سنتے ہیں کوئی بےہودہ بات تو منہ پھیر لیتے ہیں ان سے۔ چھٹی بات، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، تم سلامت رہو۔ یہ کون سا سلام ہے؟ سلام ملاقات نہیں ہے، سلام متارکہ، چھوڑنے کا سلام ہے۔ جب کوئی آپ کی بات نہ مانے تو اس کو پھر وہ سلام کریں جس کے بعد آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنے کے خواہاں نہیں ہیں، ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم جاہلوں کے منہ لگیں، لہٰذا تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ یہاں تک آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ پورا ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کے وہ لوگ جو اسلام پہ آتے ہیں ان کے لیے کتنی خوشخبری ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی بھی روایت ہے کہ وہ لوگ جو اسلام سے پہلے کسی دوسرے نبی کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو ان کے ہر عمل کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ تین لوگوں کی بات آپ نے فرمائی کہ ان کو ہر عمل کا دگنا اجر ہے، ایک تو یہی جو کسی دوسرے دین سے اسلام میں داخل ہو، لیکن شرط ہے کہ پہلے اہل کتاب ہو۔ پہلے موسیٰ کو ماننے کا اجر، اب محمد کو ماننے کا اجر صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے حضرت عیسیٰ کو ماننے کا اجر، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اجر۔ اسی طرح دوسرا، وہ شخص جس کی کوئی لونڈی تھی، اب وہ چاہتا تو اس کو غلام رکھتے ہوئے ہی اس سے فائدہ اٹھاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کو آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر کے ایک آزاد عورت کی حیثیت سے قبول کیا۔ اور تیسرا، وہ غلام یا ملازم جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آقا کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح اس کے سامنے چیزیں استعمال کرتا ہے ویسے ہی اس کے بعد بھی استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور اس کے اندر یہ جو بات ہے نا، بما صبر ہو، یہاں صبر سے کون سا صبر مراد ہے؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد ملتا ہے مشکلات پہ۔ وہاں تو کفر سے اسلام پہ یا اہل کتاب سے مسلمان ہونے کی بات تھی۔ حقیقت ہے کہ آج بھی جب مسلمان جب قرآن پڑھ کے شعوری مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو بھی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، ان کو بھی لوگ چھوڑتے ہیں، ان کے اوپر بھی الزام لگتے ہیں، ان کے اوپر بھی تانے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کر آنے والا بالکل اکیلا ہو جاتا ہے، وہ آزمایا جاتا ہے۔ ہم انسانوں کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ لوگ ہم سے خوش رہیں۔ جو ہی آپ اپنا دین بدلتے ہیں نا، یعنی وہی بات ہے، رواجی سے رسمی سے شعوری دین پہ آئے ہیں، آپ کو بھی شاید فیل ہوا ہوگا شروع شروع میں جب آپ دین کی طرف آتے ہیں، لگتا ہے خاندان نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ گئے، دوستوں نے آپ نظریں بدل لی۔ ایسے وقتوں میں کہا صبر ہو، صبر کر لو، ہم تمہارے بنیں گے۔ ایک شخص دیندار گھر میں پیدا ہوتا ہے، ایک بے دین گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ جو بے دین ماحول سے دین کی طرف آتا ہے اس کے راستے میں یہ مرحلہ ضرور آئے گا صبر ہو والا، ہجرتوں کا سفر، اپنوں کو چھوڑنا، کہیں برادری سامنے آئے گی، کبھی رشتہ دار آئیں گے، کبھی سسرال سامنے آئے گا۔ ہرقل نے بھی مسلمان ہونا چاہا تھا لیکن راستے میں کون آ گیا؟ برادری آ گئی۔ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، ابو طالب مسلمان ہونا چاہتے تھے، دوست راستے میں آ گئے۔ تو صبر کا پہلا مظاہرہ جو نا، یدرؤون بالحسنت السیئہ سے ہوگا، برائی کا جواب بھلائی سے، ان پلیزنٹ سچویشن کو پلیزنٹ میں بدلنا۔ لوگ گالی دیں آپ دعا دیں، لوگ بد دعا دیں آپ ان کے لیے خیر خواہ بن جائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ برائی کے پیچھے بھلائی کو لگاؤ تو وہ اس کو مٹا دے گی۔ دیکھیے کہ آپ برف پہ چلتے ہوئے اس چیز کو بہت اچھی طرح فیل کر سکتے، کل تک برف پرانی تھی، کالی ہو گئی نا، مٹی لگ گئی، پاؤں لگ گئے، آج رات برف بری، سارا شہر پھر سفید ہو گیا۔ یہ ہے यदराउना बिल हसनत सैया। इतना खूबसूरत क्लीन अप कोई कर सकता है? इंसानी ताल्लुकात में भी दिलों को एक लम्हे में बदल लिया करें। दिल काला हो सकता है, दिल मैले लोगों के होते हैं, रिश्तेदारियों में, अपनों में, गैरों में, लेके ना फिरें। गंदी बर्फ ना बने, साफ बने। कपड़े गंदे होते हैं, जाके बदल लेते हैं आप। बेडशीट बिछाई गंदी हो गई, साफ बदल ले। आपने शीट बिछाई, खाना लगाया, दाग लग गया, जाइए तो बदल ले। जिंदगी में ये रवैया इंसान को बहुत खुश रखता है। कुछ लोग दिल की बातों को लेके ही बैठ जाते हैं। कहा क्यों, मुझे ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों, मेरा ही ये नसीब। हाँ भाई, आपका ही था। हंस के दिखाएं, स्माइल। आप देखें, एकदम बंदे को एनर्जी मिलती है ना। कभी जिंदगी में किसी इंसान से इख्तलाफ हो सकता है, पहली बात है। सास का बहू का चल सकता है क्लैश, कोई अननेचुरल बात नहीं है। माँ बेटी की सोच बदल सकती है। एक बात जिसको कहते हैं ना, गिरा से बांध के रख ले, जुबान से कुछ ना बोले। बुरे दिन आए, खामोशी इख्तियार कर लें। दिल खट्टा हुआ है, आप अपना काम करना शुरू करें। आपको लगा है शोहर को गुस्सा है, पकड़े उसी के कपड़े, जाके दूसरे कमरे में इस्त्री करने शुरू कर दें। बच्चा सता रहा है, उसी वक्त उसके मुंह ना लगे, आगे से हट जाए। यकीन करें कि चंद घंटे में सब बात नॉर्मल हो जाएगी। सबसे बड़ा जो फितना आता है वो क्या है कि जूं ही किसी से खटपट हुई, जुबानें उगलने लगती हैं जहर। फिर दावे, आज के बाद मैं शक्ल नहीं देखूंगा, मैं तो मर के भी उधर नहीं जाऊंगा। अब जब बाद में दिल से गुस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन वो मुंह का बोला कैसे लगे, वो बीच में आता है ना, वो मुश्किल आता है। ऐसे वक्तों में खुद को थाम लेना हकीकत में इंसान को बहुत ज्यादा बाद में पलटने में मददगार बनता है। हमेशा अगर वो बात याद रखे ना, मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, तो दिल आपकी जगह है जहाँ अल्लाह को आपने ठहराना है। अल्लाह की याद की जगह है, अल्लाह के प्यार की जगह है। मैं इसको गंदा करूँ, जैसे रोज ड्राइंग रूम की डस्टिंग करते हैं ना, झाड़ पोंछ करते हैं, इससे सुबह उठ के दिल की भी कर लिया करें। पानी पी लें, जमजम पी लें, दुआ मांग लें, अल्लाह मेरे दिल में किसी के लिए गुस्सा है को गिला ख़त्म कर दे। 3 दिन तक एक ही शख्स के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते रहे कि अभी जो शख्स तुम्हारे सामने से गुजरेगा वो जन्नती है, आज जो गुजरेगा जन्नती, आज जो गुजरेगा जन्नती। 3 दिन एक ही सहाबी गुजरे। एक दूसरे सहाबी के दिल में ख्याल आया कि मैं देखूँ तो सही इनका अमल कौन सा है जिसके लिए इतनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में खुशखबरी दी। किसी बहाने से उनके पास आए, कहा मैंने कसम खा ली कि 3 रातें घर नहीं जाऊँगा, आप मेरी मदद करें, मैं आपके घर में रहूँगा। कहा शौक से रहिए, मुसलमान का हक है कि उसकी मदद करे। और चुपके चुपके उसके मामलात देख रहे थे, इबादत देख रहे थे, मामलात। कहा सारा कुछ वो था जो हम भी करते हैं, उसमें तहज्जुद भी थी जो उनके आम दौर की बात थी। 3रा दिन हुआ तो कहने लगे, सच्ची जो बात है, मेरे आने का मकसद ये था कि मैं आपकी कोई ख़ास बात देखना चाहता था जिसके लिए अल्लाह के नबी ने आप जन्नती होने का लक़ब दिया आपको। कहा कुछ नहीं, मेरी इबादत तो तुमने देख ही ली है, एक बात बस मुझे अपने बारे में पता है, मैं कभी अपने दिल में किसी मोमिन के बारे में कोई गुस्सा नहीं रखता। कहा बस यही वजह है। कुरान पाक की सूरह हशर में ये दुआ आप लोग भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि मोमिन दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ला तजल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए गिल निकाल दे। और मैं कहती हूँ आज दीनदारों के दिलों में दूसरे दीनदारों के लिए गिल निकल जाए ना, तो उम्मत जुड़ जाएगी। हमारी आवाज़ें होती ऊपर तब है मेम्बरों पर जाके खुतबों में जब हमारे दिलों में गिल होता है। हमें सूद लेने वाले बुरे नहीं लगते, हमें ख़राब काम करने वाले बुरे नहीं लगते। हम अपनी बच्चियों, बेटियों, बहनों के लिबास, हाल हुलिये पे बस सब्र कर चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन दूसरे के दीन और उसकी मजहबी सोच पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फिर आप देखिए कि इसके साथ ही जो दूसरी सिफत आई, मिम्मा रज़क नाम यून, ये इसका भी ताल्लुक है इसके साथ। जब इंसान को आदत हो जाती है ना दूसरे के बुरे मामले को अच्छे से बदलने की, तो फिर देना भी आसान लगता है, फिर इज्जत भी बंदा दे लेता है, फिर मदारत भी करता है, फिर उससे अच्छे ताल्लुकात भी रखता है, फिर वो उस बंदे के साथ उखड़ा उखड़ा नहीं रहता, फिर माली एसार भी करता है, अपना माल लगाता है, अपनी स्किल्स लगाता है, क्योंकि हक की सफ़र में आए। ये वही इशारा है कि उन्होंने कहा कि हम हबशा जाके आपके लिए पैसा भेजेंगे, हमें पता चला है कि आपके लिए इधर ज़रूरत है, हम भेजेंगे। और मक्का वाले लड़ने आ रहे हैं, जो अपने थे वो दुश्मनियाँ दिखा रहे हैं, और कहाँ से अल्लाह ताला ने के दिल में मदद का ख्याल डाल दिया। इससे भी एक बात पता चलती है कि जब कोई इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है, कोई इंसान अगर उसका साथ ना भी दे तो अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद कर देता है, बाहर से उसको मदद मिल जाती है, और इस तरीके से वो काम आसान हो जाता है। फिर 3री सिफत ज़रा इसके साथ रिलेट करें कि वाइज़ा समी लगव आरादू अनहू, जब लख बातें सुनते हैं तो इराज कर लेते हैं। अब यहाँ लख बातें कौन सी होंगी भला? ये वो आयते हैं जो सूरत فرقان کے آخر میں تھیں. یہ لغو سے مراد یا ناچ گانا ہے؟ نہیں, یہاں لغو سے مراد مخالفت میں کی جانے والی باتیں ہیں. ہوتا کیا کہ جہاں دو گروہوں کے بیچ میں ذرا سی گڑبڑ ہوئی نا, یا دو انسانوں کے بیچ میں, وہ شوہر بیوی بھی ہو سکتے ہیں, تو اوپر والے بن جاتے ہیں کبوتر, اس کی باتیں ادھر اس کی باتیں ادھر. سی آئی ڈی یہ کہہ رہے تھے, وہ تمہیں یہ کہتا ہے, اب تمہاری بیوی دیکھو یہ کہہ رہی ہے, اور تمہاری ساس نے تو آج یہ کہا ہے تمہارے لیے. یہ ہے وہ چیزیں جس سے شیطان چھوٹی بات کو بڑا کراتا ہے. کہا جب کبھی کوئی مخالف گروہ کی طرف سے کوئی ایک جملہ لے کے آتا ہے نا کہ جی آپ کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو کیا کہتے, اچھا سنانا اور کیا کہا؟ نہیں, آ ردوان ہو, کہتے رہے پھر, میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. اے راز, اس خوبی کی وجہ سے پھر دین پھیلتا ہے. دل دکھانے والی باتیں, مخالفت کی باتیں سننا بھی گوارا نہیں کرتے. چھوڑو چھوڑو, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. یہ دیکھیے لفظ ارادہ, ارد کہتے ہیں سامنے کی چیز کو, چوڑی چیز, ارز کپڑے کا بھی ہوتا ہے نا, اور ارادہ ان اپوزٹ معنوں میں چلا جائے گا, سامنے سے ہٹ جاتے ہیں, پیچھے ہو جاتے ہیں. الزامات ہیں, چھوٹی باتیں, بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنے لگتے ہیں نا. تو کہا کوئی بات نہیں, آپ ایسی باتوں کا جواب یہ دے خاموش. دیکھیے اسلام کی پالیسی جو ہے نا وہ اوائڈ کیا, اس کے نیچے ایک چھوٹا سا لکھ لیں اوائڈ کرتے ہیں. صرف اگر مسلمان لفظ اوائڈ کرنے پہ غور کر لے نا دن میں دو تین بار, تو بہت سارے جھگڑوں سے بچ. اگنور اٹ, اوائڈ اٹ. راستے میں چل رہے تھے, سامنے پتھر آ گیا, اوائڈ اٹ. آپ اس پتھر کو کہ تم نہیں ہٹو گے, میں نے اسی کے اوپر سے گزرنا ہے, پہلے آپ کا جوتا ٹوٹے گا, پھر ناخن ٹوٹے گا, پتھر کو کچھ نہیں ہوگا, پھر خون نکلے گا, پاؤں زخمی ہوگا, پتھر وہیں پڑا ہے, پتھروں سے نہیں الجھا کرتے. خود پہچانے میرے راستے کا پتھر کون ہے, میری کامیابی کے راستے میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے, بس اعراض کریں. ہر اس ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی سے ایک سائٹ پہ کر دیں جو آپ کو بھاگنے نہیں دیتی. جس نے ہمارے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں نکال دیجئے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, کتنا پیارا کردار سامنے آتا ہے. یہ ساری وہی حبشہ سے آنے والے گروہ کے ٹیکس میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ اپنوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کرنی شروع کر دیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. یہ بالکل ایسا معاملہ ہے, چھوڑو. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین, ہم نہیں منہ لگتے جاہلوں کے. بعض دفعہ گھروں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے مزاج نہیں ملتے, اب مجبوری ہے, کیا کریں, الگ ہو جائے, نہیں ہو سکتے, ایک ہی گھر میں رہنا ہے, ساس نے بھی ادھر رہنا ہے, بہو نے بھی رہنا ہے, تو کیا کریں, ماتھے نہ لگے, کم بات کریں, کم وہ ایشوز شیئر کریں جس سے جھگڑے کا امکان ہوتا ہے. اور جب پیدائشی مسلمان شعوری مسلمان بننا چاہتا ہے, یہ سارے مرحلے راستے میں آتے ہیں, اس کو سہ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ دل کھول دے گا. امام رازی ہیں, کہتے ہیں اگرچہ یہ اہل کتاب کے بارے میں, مگر کوئی مسلمان بھی ان حالات سے گزرے تو اس کو بھی یہی کرنا ہوگا. آگے دیکھتے ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین, بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں, البتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں بات ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. جب ان کا آخری وقت آیا تو اللہ کے نبی نے اپنی آخری حد تک کوشش کی کہ وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لائیں تاکہ ان کا انجام بالخیر ہو, لیکن انہوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو ہی پسند کیا. اللہ کے نبی کا دل دکھا. آج ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو آج تک یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے یا کفر پہ تھے. ہم کسی کو نہیں کچھ کہتے, لیکن احادیث بہرحال موجود ہیں, اور کچھ لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ دفاع کیا ان کا کہ کم از کم اگر آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جائیں گے, تو یہ بھی نہ کہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے, اور اس پہ پورے پورے مقالے لکھے گئے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی ان سے محبت نہیں کر سکتا, لیکن آخری لمحے تک آپ ان کی ہدایت کے حریص رہے, کوشش بھی کی, لیکن روایات میں آتا ہے کہ جو ہی ان کا انتقال ہوا کفر پہ تو اللہ کے نبی وہاں سے ہٹ گئے. تو یہ بتا دیا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ انسان کی بے بسی پتہ چلتی ہے, انسان کی لمیٹیشنز کا پتہ چلتا ہے کہ ایوری باڈی ہیو سم لمٹس, بس اس کے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس سے اللہ تعالیٰ کا الہادی ہونا پتہ چلتا ہے, اور اس سے اللہ کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے یہ پتہ چلتا ہے. अब देखिए कि हर इंसान, ख़ास तौर पे जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला होता है, उसके दिल में एक फितरी ख्वाहिश मौजूद होती है कि दूसरे उससे फ़ायदा उठाकर हिदायत पर आएं। और सबसे ज़्यादा ये तड़प जो है इंसान को अपने घर वालों के लिए होती है। हर माँ के दिल में बच्चे की हिदायत, बेटी की हिदायत, बेटे की हिदायत, बीवियों के दिलों में शोहरों की होती है। अब हम इस मामले में क्या इख्तियार करें, थोड़ी सी इस पर हम बात करेंगे। आप देखिए कि हिदायत दो किस्म की होती है, एक होती है हिदायत तौफीक और दूसरी होती है हिदायत इरशाद। हिदायत तौफीक क्या है कि बंदे को सीधे रास्ते की तरफ जाने की तौफीक मिल जाए, रास्ता सीधा हो गया, चल पड़ा उसकी तरफ, और यहाँ इससे यही मुराद है। ये रास्ता कोई किसी को नहीं दिखा सकता, ये तलब है, ये तड़प है, ये वही चीज़ है जो आपको यहाँ आज लेकर आई हुई है। आप सबने हिदायत तौफीक का मरहला अल्लाह की मदद से खुद तय किया, इसलिए अब यहाँ आके बैठ गए हैं। इसके बाद अगला मरहला शुरू होता है हिदायत इरशाद का। क्या आप यहाँ चूँकि हिदायत की तलब से भरा हुआ दिल लेकर आए, आप कोई भी उस्ताद, कोई भी मुखलिस, कोई भी दाई आपको अल्लाह की दावत देगा, अल्लाह के दीन की तरफ ले जाएगा, आपकी ग्रामर ठीक कर देगा, कोशिश करेगा, तजवीद करेगा, आपको तफसीर बताएगा, तस्किया करेगा, साथ साथ आपकी तलब रहेगी, दूसरा भी फ़ायदा दे देगा। लेकिन अगर आपकी हिदायत यानी तौफीक आपसे छिन जाती, आप खुद इस रास्ते पे ना आना चाहते, तो घर बैठने वालों को तो जाके कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं सिखाता। तो यहाँ मुराद क्या है कि जिस दिल में खुद तलब ना हो, उस दिल में फिर आप तलब नहीं पैदा कर सकते। हज़रत नूह अपने बेटे के दिल में पैदा ना कर सके, अपनी बीवी के दिल में पैदा ना कर सके, हज़रत लूत अपनी बीवी के दिल में ना पैदा कर सके, बीवी आसिया अपने शौहर के दिल में ना पैदा कर सकी, तो अल्लाह का नबी अपने चचा के दिल में कैसे पैदा करता। बार बार ये आयत आती है कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। अगर मैं ये शाक उस बंदे की तरफ भी ले लें जिसको हिदायत लेनी है, तो फिर वो मफहूम भी समझ आता है कि जो बंदा खुद नहीं चाहता, अल्लाह भी उसको हिदायत नहीं देता। वाहु आलमु बिल मुख्तदीन, उसको हिदायत वालों की खूब खबर है। हमारा अमल इसमें क्या होना चाहिए? पहली बात यह कि तड़प रखें, कोशिश भी करें, बच्चों की हिदायत की तमन्ना रखें, दुआएं मांगें, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिम वजालना लिलमुत्तकीना इमामा, और इसी तरह की दुआएं मांगें। फिर आप उन पे नज़र रखें कहाँ वो सीधे रास्ते से भटक रहे हैं, फिर उसके लिए आप खूबसूरत से खूबसूरत तरीके अख्तियार करें। मसलन आप देखिए कि हर माँ बच्चे की खुराक के बारे में बहुत कॉन्शियस होती है, नाखून देखती हैं, इसके नाखून पीले हो रहे हैं, इसकी आंखें पीली हो रही हैं, इसमें कैल्शियम की कमी है, ये बच्चा दूध नहीं पीता, इसकी हड्डियाँ मुड़ रही हैं। फिर वो उसको दूध पिलाने के कई मुख्तलिफ तरीके ढूंढती है, कभी उसको मिल्क शेक बना के देगी, कभी चॉकलेट डाल के देगी, कि किसी भी तरीके से ये दूध पी ले। इसी तरह आप अपने बच्चों को खूबसूरत से खूबसूरत तरीके से दीन की तरफ लाएं, माइल करें, कोई भी तरीका हो, लेकिन फिर वही कहूँगी कि उसमें दीन की बेसिक्स ना बदलें। यानी मसलन आप अपने बच्चे से कहें, अच्छा तुम कुरान पढ़ लो, मैं साथ म्यूज़िक चला देती हूँ, तुम्हें कुरान की तिलावत अच्छी नहीं लगती, चलो एक कान में म्यूज़िक लगा लो, दूसरे में कुरान पढ़ो। फिर नहीं, पहले देखें तलब है कि नहीं, पहले उसकी भूख जगाएं, जब भूख जाग जाएगी ना, फिर आप रोटी रखें उसके आगे खा जाएगा, चावल रखें खा जाएगा। जब भूख मरी होती है ना, तो वो असल में हिदायत तौफीक ख़त्म हुई होती है। एक दफ़ा भूख जगा दें, आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, वो चल पड़ेगा। पहला कदम अल्लाह की तौफीक से होता है, फिर इंसान के लिए रास्ते हमवार हो जाते हैं। नफ्स बहुत बड़ी रुकावट है हिदायत तौफीक के रास्ते में। ईमान लाने के बाद एक इंसान सबसे ज़्यादा जो धोखे खाता है ना, वो अपने आप से खाता है। नफ्स मोटा हो जाता है, कुछ कल्चर, कुछ स्टाइल, कुछ ज़िंदगी गुजारने के तरीके ही ऐसे होते हैं कि मोटा कर देते हैं नफ्स को। इंसान खुद मान रहा होता है कि मैं अपनी इस वक्त नहीं मान रहा, लेकिन वो पलटता नहीं, वो कहता है हाँ अगर मुझे अल्लाह हिदायत देगा तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन वो उसको मिल क्यों नहीं रही, नफ्स मोटा हुआ है। ऐसे बंदे का एक इलाज नफ्स कुशी भी है। अगर आपके बस में हो ना, तो कम से कम फरमाइशें पूरी करें। हम सोचते हैं कि दूसरों की बातें बहुत मानते जाएं ताकि वो हमारी दीन वाली मान लें, कभी भी नहीं मानेंगे। ये तो ऐसे ही है कि आप एक दरख्त को काटना शुरू करें, सारा दिन उसको थोड़ा 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 करके काटें बाहर से, और रात को जाने से पहले दोबारा फिर उसके उस कटे हुए हिस्से के अंदर कोई एल्फी या कोई ऐसी चीज़ भर दें जिससे वो दरख्त दोबारा जुड़ जाए अपनी जगह पर। सारा दिन आप दीवार को तोड़ने की कोशिश करें, रात को टूटने लगे तो जाते जाते सीमट भर जाए। कभी भी गलत बात पे समझौता ना करें, चाहे आपकी अपनी औलाद हो, चाहे शौहर है, चाहे कोई जाबिर से जाबिर, जालिम से जालिम शख्स है। हमेशा याद रखें कि दूसरे हमारे ऊपर काबू कब पाते हैं, जब हम उनकी गलत मानते हैं। आप एक दफ़ा सास की गलत मान जाएंगी ना, सिर्फ इस नाम पे कि मेरी सास है, आपको रोज़ माननी पड़ेगी। आप एक दिन अपनी बहू की गलत बात पे चुप कर जाएंगी ना, आपको रोज़ चुप करना पड़ेगा। यही होता है मैन ऑफ प्रिंसिपल होना। जो असूलों पे समझौते नहीं करते लोग उनसे डरते हैं। बस लोग एक के ऊपर बहुत रोब डालते हैं, दूसरी बहू पे कोई रोब नहीं है। वजह क्या है? उनको पता है इस दूसरी ने सुनना कोई नहीं और पहली ने सुन के पलट जाना है। तो लिहाजा यहाँ हमें ये बात बता के अल्लाह ताला ने अपनी इसलाह की दावत दे दी कि हम गौर करें कि हम वाकई क्या इस चीज़ की तलब रखते हैं। कोई ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ना ले कि मैं लोगों को हिदायत दूंगा। बस वह ना चाहते हुए भी जुमले ऐसे मुंह से निकल जाते हैं, फलां की वजह से उसको हिदायत मिल गई, फलां सबब बना हिदायत का। नहीं, वो भी अल्लाह ही बनाता है। किसी के आने से किसी को हिदायत नहीं मिलती, किसी के जाने से हिदायत नहीं मिलती। जब पीछे निगाहें अलहादी पे होंगी लोगों में नहीं उलझेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर इससे शख्सियत परस्ती भी शुरू हो जाती है। इसके बाद मक्का वालों की एक गलत फहमी का इजाला है। वह कालू, और उन्होंने कहा, इन नत्तबील हुदा, अगर हम इत्तबा करें हिदायत का। आप नोट कर रहे हैं, पूरा सबक आज हिदायत के इर्द गिर्द घूम रहा है, सर्व किया जा रहा है, ऑफ़र किया जा रहा है मक्का वालों को। शुरू ही बात सबक की हुई थी अल्लाह के नबी की आमद से। नबी भेजा गया, नहीं मान रहे, ये कर दो, मूसा जैसी बातें दो, मूसा जैसे मौजज़ा दो, ये करेंगे वो करेंगे। असल में हिदायत तौफीक ही नींद की जागी। एक और उज़र जो उज़रे लंग कह लें आप कि मक्का वालों का था हिदायत कबूल करने के रास्ते में, वो क्या था? कहने लगे, अगर हम इत्तबा करेंगे हिदायत की माँ का आपके साथ, यानी अगर हम अपना लाइफ स्टाइल आपके जैसा कर ले, होगा क्या? नुतखत्तफ मिन अर्दिना, तो हमें तो उचक लिया जाएगा हमारे मुल्क से। आज है ये खौफ लोगों को, हमारा तो ख़ानदान छोड़ देगा, बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, हम असिमिलेट नहीं होंगे, फिर हम डिसोसिएट हो जाएंगे, फिर हमारे कारोबार नहीं होंगे। आप देखिए कि सेपरेशन होती है ना, जब दो रास्ते साथ चलते चलते सेपरेट होते हैं, अगर कोई दो रास्ते सेपरेट ना हो तो आप बताइए मुख्तलिफ मंजिलें कहाँ से बने। यहाँ से हम निकलें और हर रास्ता बस एक ही तरफ चलता जाए, सारी शहर की सड़कें यहाँ से सीधी शिमाल की तरफ चलती जाएं, बाकी शहर में लोग कहाँ जाएंगे? डाइवर्शन क्यों होती है? ताकि लोग मुख्तलिफ रास्तों पे चलें, अपने लिए मुख्तलिफ मंजिलें हासिल करें। अल्लाह के नबी के ज़रिए से लोगों के पास एक बहुत गोल्डन चांस था कि वो सदियों की रिवायतों को तोड़ें और डाइवर्शन पैदा करें, चेंज लाएं अपनी सोसाइटी में, जमूत को तोड़ें, खराबियों को ख़त्म करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिवायत परस्त हो चुके होते हैं, तब्दीली नहीं पसंद करते। कुछ लोग कभी भी चेंज को कबूल ही नहीं करते, चाहे वो अच्छी क्यों ना हो। 10-10 साल एक ही जगह बैठे रहेंगे, सिर्फ इस खौफ से घर नहीं बदलेंगे कि नहीं, चेंज करना बहुत मुश्किल है, सामान उठाना पड़ेगा और हम अपसेट हो जाएंगे और नई जगह पे जाके हमारा दिल नहीं लग सकता। कुछ लोगों को 10 दफ़ा पता चल जाता है कि हमारी आदतें बुरी हैं, चेंज इसलिए नहीं करते कि वो बीच के जो मरहले हैं उनको पसंद नहीं करते और उनको वो अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मक्का वाले जो आज खाना कबा की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑनरेबल और बहुत अहम समझते हैं, फरमाए अवलम नुमक्किल लहुम हरमन आमिनन, क्या हमने बसा नहीं दिया इन्हें हरम में जो अमन वाला है? युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शैइन, खिंचे चले आते हैं इसकी तरफ हर किस्म के फल। क्या है ये? रिज़्क़ मिन लदुन्ना, ये रिस्क है हमारी तरफ से। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन इनमें से अक्सरियत जो है वो नहीं जानती, उनको नहीं पता चलता, उनको नहीं पता कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। इधर एक ख़ास तनाजर है इस आयत का, और वो क्या है कि कुरैश को शुरू से जिस चीज़ ने अरब में अहमियत दी थी ना, वो इनका हज़रत इस्माइल और इब्राहिम की नस्ल में से होना था। अब नस्ब के नाते से ये इतने अहम हुए कि बाकी ख़ानदानों के मुकाबले में इनका मुकाम वही था जो कहा जा सकता है हमारी ज़बान में कि पीर ज़ादों का ख़ानदान था। ये अपने आप को पीरों की औलाद समझते थे। कुसई बिन कलाब अल्लाह के नबी के आबा अजदाद में जो थे, उसी की हुस्ने तदबीर से ये लोग खाना काबा के मुतवल्ली बने, मक्का इनका मस्कन बना, इनकी अहमियत पहले से और ज़्यादा हो गई। फिर ये मुजावर बन के बैठते थे वहाँ। अब ये जो मजहबी पेशवाई का इनको मुकाम मिला हुआ था ना, हज की वजह से जब भी कोई कबीला इधर आता, ये हो ही नहीं सकता था कि कुरैश से मिलके ना जाता। आप कह लें कि इनको एक मजहबी अथॉरिटी मिली हुई थी, गद्दी नशीन थे लोग, उनको उस शहर में आते दीन के नाम से पहचानते थे और इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। होते होते हुआ क्या कि इनकी ये मजहबी हैसियत तिजारती हैसियत में बदलने लगी। हरम जो था वो इनके दीन से ज़्यादा इनकी तिजारत का ज़रिया बन गया। रूम से, ईरान से, इर्द गिर्द से लोग जब आते, सियासी कशमकश तो थी ही इर्द गिर्द दुनिया में, लोग वहाँ से माल लेकर आते और मक्का में बेचते। आप कह सकते हैं कि खाना काबा या हरम या मक्का अब एक मजहबी शहर से ज़्यादा तिजारती शहर बन चुका था। और ज़्यादा तिजारत उस दौर में भी गैर मुस्लिमों के साथ थी, मसलन रोमन से, यूनानियों से, मिस्रियों से, और इस तरह इर्द गिर्द, जैसे आज के दौर में आप कहें कि चाइना, हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, अफ्रीका, इस तरह के ये लोग थे। अब जब इस्लाम फैलने लगा ना, तो इनको खौफ क्या आया कि अगर ये सारा शहर ही मुसलमानों का हो गया और हम वो करने लग गए जो अल्लाह के नबी कर रहे हैं, तो हमारी तिजारत ख़राब हो जाएगी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हो जाएंगे, हमें बिजनेस में घाटा पड़ेगा, हम किस तरीके से ये करें, और आहिस्ता आहिस्ता लोग इधर आना छोड़ देंगे, तो इससे हम क्या होंगे, नुतखत्तफ, उचक लिए जाएंगे। खा तो इफा है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, यकादुल बर्कु यख्तफ मिन अबसारिहिम, सूरह बकरा में, उचक ले जाना। इस बात से डर था इनको कि अगर हम दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो गए तो हम पनप नहीं सकेंगे, हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, हमारी कम्युनिटी हमें छोड़ देगी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है, ये शैतान का दिलाया हुआ एक गलत ख्याल है, वरना हकीकत क्या है कि तुमने कभी गौर नहीं किया। अब अलम नुमक्किल्लहुम हरमन, क्या हमने तुम्हें जगह न दी हरम में? ये हरम ही तो है जिसकी वजह से ये संगलाह ज़मीन गुलो गुलजार बनी हुई है। यहाँ तो लोग कभी मुँह ना करते, लेकिन लोग आज इधर क्यों आते हैं? इस हरम की वजह से। तो क्या इस हरम के रब की बात मानकर तुम कमज़ोर हो जाओगे? कितना खूबसूरत मैसेज है कि दीन की तरफ आने से कभी दुनिया नहीं बिगड़ेगी। लोगों देखो, युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शयइन रिज़्क़ मिन लदुन्ना, ये हर तरफ से जो फल आते हैं ये हमारा दिया हुआ रिस्क है। कि क्या हमने अगर तुम्हें रिस्क दे दिया, ये कुछ दे दिया, तो आप कल तो मुसल्ला की बात मानोगे तो क्या वो तुम्हें रिस्क नहीं देगा? वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते, अक्सरियत को ये पता ही नहीं होता कि उनको जो दुनिया में रिस्क मिल रहा है ना, ये भी दीन की वजह से मिल रहा है, उनकी नेकियों की वजह से मिल रहा है, उनके तकवा की वजह से मिल रहा है। हदीस में आता है कि तुम्हें तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है। हो सकता है किसी घर में कोई एक बुज़ुर्ग हो बहुत अल्लाह से डरने वाला, इबादत करने वाला, सिर्फ उसके दम से अल्लाह बरकत ऐसी दे रहा है कि दिन रात घर में माल आ रहा है। आप उसी एक बुज़ुर्ग को अपने लिए बोझ समझ के घर से निकालें, रिस्क ख़त्म हो जाएगा। ये तो पता तब चलता है जब बुज़ुर्ग नहीं रहते, फिर पता चलता है कि अम्मा की दवा पे जो पैसा लगता था, इसके बावजूद भी घर में इतनी बरकत क्यों थी, क्योंकि वो बीच में से निकल गया। तो क्या जो अल्लाह किसी को अपनी बात मानने पे कुछ दे सकता है, क्या वो अपनी बात छोड़ने पे भी देगा? किसी से कुछ लेना हो तो नाराज़ करके उससे ले सकते हैं, या खुश रख के उसको ले सकते हैं। अल्लाह ताला इनके शौहर को बेदार करते हैं। कभी तुमने सोचा, कोई खेती बाड़ी तुम नहीं कर सकते, रेत तुम्हारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी है, सारी दुनिया के फल तुम्हारे पास कैसे आते हैं? फिर इतना अमन, अमनम का लफ्ज़ भी आप देखिए कि अमन दिया हमने तुमको, चारों तरफ लड़ाइयाँ लगी होती थी, लेकिन हरम की हद में आते ही सुकून हो जाता था। तो सोचो कि अगर कुफर की हालत में तुम्हें अल्लाह ने इन इनामात से, इन नेमतों से महरूम नहीं किया, तो क्या अब तुम इस्लाम लाओगे तो अल्लाह की ये रहमतें तुमसे दूर हो जाएंगी, कि लोग तुम पर हल्ला बोलेंगे, तुम्हारे रिस्क को बर्बाद कर देंगे? हरगिज़ नहीं, अल्लाह लेकर आएगा। ये जो लफ्ज़ है ना, युजबा, जबा से है ये, यजबा कहते हैं जमा करने को। हौज में पानी जमा हो गया, इसके लिए अलजाबिया, अलहौजुल अजीम का लफ्ज़ आता था। बड़े हौज को इसीलिए फिर जाबिया कहते हैं अरबी ज़बान में, जवाब का लफ्ज़ आगे आप पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी देगों के लिए। तो ख़ुलासा क्या है इसमें हमारे अपने लिए, कि कभी भी ये ना सोचिए कि दीन पे आने के बाद मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हराम छोड़ दिया तो घर में फाके आ जाएंगे, बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, घर बिक गया तो छोटे घर में जान निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। एक दफ़ा देखो कि अल्लाह ताला देने वाला क्या है, और बाकी रह गई बात के चलो ठीक है, छूट भी गया तो इस माल ने कौन सा तुम्हें बचाना है? क्या तुमने कभी उन लोगों की तरफ गौर नहीं किया